प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जो ना होता तुमसे नाता, जो ना होता तुमसे नाता, मन पतित हो के रह जाता। जो ना होता तुमसे नाता, मन पतित हो के रह जाता। जीवन सिसक ढल जाता, जीवन सिसक ढल जाता। बन जाता शमशान मसीहा, तुम हो मेरे प्राण मसीहा, तुम हो मेरे प्राण। मन में प्यार का दीप जलाएं, मन में प्यार का दीप जलाएं। सदा रहें हम शीश नवाए, सदा रहें हम शीश नवाए। ऐसा कर दो प्रभु उपाय, ऐसा कर दो प्रभु उपाय। युग युग पाए ज्ञान मसीहा, तुम हो मेरे प्राण मसीहा, तुम हो मेरे प्राण। यही कि फिर आओगे, आस यही कि फिर आओगे। नैनन ज्योति बन जाओगे, आस यही कि फिर आओगे। नैनन ज्योति बन जाओगे। धर्मी जन को अपनाओगे, धर्मी जन को अपनाओगे। तब होगा कल्याण। मसीहा तुम हो मेरे प्राण, मसीहा तुम हो मेरे प्राण, तुम हो करुणा निधान, तुम हो करुणा निधान। मसीहा तुम हो मेरे प्राण, मसीहा तुम हो मेरे प्राण, मसीहा तुम हो मेरे प्राण, मसीहा तुम हो मेरे प्राण।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों पुराने नियम में से अंतिम पुस्तक मलाकी का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि इसराइली परमेश्वर से प्रश्न करते हैं और तब परमेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में आपकी आशीष पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, उनके जीवन को स्पर्श कीजिए ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम सब देख रहे हैं कि बंधुआई से स्वदेश लौटे इसराइली व्यवस्था के अनुसार तो अपने धार्मिक संस्कार पूरे कर रहे थे परंतु मन की श्रद्धा से नहीं। अतः परमेश्वर उनसे शिकायत करता है कि वे अपनी ऊपरी दिखावे का धर्म निभा रहे हैं। यह सुन के वे रुष्ट हुए और अपने आप को निर्दोष मानते हुए परमेश्वर ही से प्रश्न करते हैं। मलाकी के युग में इसराइलियों द्वारा परमेश्वर की आराधना व्यर्थ एवं निस्सार थी। समस्या परमेश्वर के साथ नहीं, उनके साथ थी। एक बार मैं किसी रोगी से भेंट करने के लिए अस्पताल गया। उसकी पत्नी मुझे वार्ड के बाहर ही मिल गई। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि वह मरने वाला है। मैं भीतर गया कि उसके साथ प्रार्थना करूं और उससे बातचीत करूं। इसलिए नहीं कि उसे शांति मिले, परंतु इसलिए कि उसकी पत्नी को उसके उद्धार का विश्वास हो जाए। उसने कहा, पास्टर मैं ठंड से जम रहा हूं, आप कृपया वह कंबल मेरे ऊपर डाल दें। मैंने उसे कंबल ओढ़ा दिया। वह कमरा बहुत गर्म था, परंतु वह सोच रहा था कि कमरा बहुत ठंडा है। उसने दोष लगाते हुए कहा, ये लोग कमरे को गर्म नहीं रखते हैं। इसी प्रकार अनेक विश्वासी शिकायत करते हैं कि आराधना ठंडी है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आराधना ठंडी है? यह भी तो हो सकता है कि आप ठंडे हैं। उचित होगा कि आप अपने आप को जांचें। इसराइल में समस्या लोगों की थी, परमेश्वर की नहीं। मेरे प्रियो, मैं धर्मशास्त्र में आराधना की उचित परिभाषा देखना चाहता हूं, जो यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय में दी गई है। 58 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हम तो उपवास रखते हैं परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। मेरे प्रियो, देखिए, यशाया जो मलाकी से बहुत पहले था, उसके युग में भी इसराइल की यही समस्या थी। वे उपवास रखते थे और अपने प्राण को कष्ट देते थे, परंतु परमेश्वर कुछ नहीं करता था। यशाया कहता है 58 अध्याय उसके 4 पद में, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे उपवास पर ध्यान नहीं देता हूं। तुम केवल ऊपरी दिखावे के लिए विधि का पालन करते हो और फिर विवाद करना चाहते हो। वे धर्म के संबंध में अपने उचित ठहरने पर विवाद करते थे। कभी कभी मुझे बहुत बड़ा पत्र प्राप्त होता है जिसमें लेखक मुझसे धर्म सिद्धांत पर विवाद करना चाहता है। हो सकता है कि मुझ में कोई कमी हो, परंतु मैं उन पत्रों को रद्दी में डाल देता हूं। आप में और मुझ में वचन की व्याख्या का अंतर हो सकता है, परंतु विवाद करना समाधान नहीं है। उचित तो यह होगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आपको मेरी व्याख्या को भी परखना है। मेरे प्रियों, अब यहां है आराधना की सच्ची परिभाषा, यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय उसके 6-8 पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। मेरे मित्रों, यशाया का कहने का अर्थ है कि जब आप आराधना में उपस्थित हों, तो आपका जीवन आपकी आराधना को सहारा दे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर आपसे ऐसा जीवन चाहता है कि जो आप कहते हैं वह आपके जीवन से प्रकट हो। यह सच्ची आराधना की परिभाषा है जो हम पुराने नियम में देखते हैं। धार्मिक संस्कारों का कोई अर्थ नहीं है यदि वे मन की गहराई से नहीं उभरते हैं। मन को परमेश्वर की दृष्टि में सही होना है। हमें यह सदा स्मरण रखना है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमेश्वर को छल कर बचना चाहते थे, परंतु हबकूक ने देखा कि परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप करके उन्हें दंड देने की तैयारी में था। मेरे विचार में, यदि हम दृश्य के पार देखें और परमेश्वर के चक्र को घूमता देखें, तो निश्चय ही हम उसकी दया के लिए पुकार उठेंगे, वह शांत नहीं बैठा है, परंतु हमें उसकी गतिविधि का बोध नहीं है। मलाकी आगे कहता है 3:16 में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मित्रों ध्यान दीजिए, लिखा है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। इसका अर्थ है कि उनमें कुछ लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, उससे प्रेम रखते थे और सहभागिता करते थे। लिखा है और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनते थे, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। संपूर्ण धर्मशास्त्र में यह माना गया है कि परमेश्वर लेखा रखने के लिए एक पुस्तक तैयार कर रहा है, परंतु मेरे विचार में यह पुस्तक नहीं लिख रहा है, क्योंकि वह भूलता नहीं है। अतः उसे न तो किसी पुस्तक की आवश्यकता है और न ही किसी कंप्यूटर की। प्रकाशित वाक्य में भी पुस्तक का उल्लेख किया गया है। 3 में लिखा है कि वह पुस्तक में लिखे नाम मिटा भी सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:4-5 में लिखा है, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। यह निश्चय ही कठोर भाषा है और प्रकाशित वाक्य के अत्यधिक कठिन अंशों में से एक है। मेरे विचार में परमेश्वर पुस्तकें नहीं रखता है, परंतु हमें समझने में आसानी हो इसलिए यह रूपक काम में लिया गया है। हो भी सकता है कि उसके पास एक पुस्तक हो। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंत में भी लिखा है कि जब अविश्वासी श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब पुस्तकें खोली जाएंगी, अर्थात अनेक पुस्तकें होंगी, उद्धार पाने वालों की भी एक पुस्तक होगी। मैं इससे संबंधित एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। विद्यार्थी अपना परिणाम पत्र पाते हैं जिसके लिए आपको स्कूल में नाम लिखाना होता है। इसी प्रकार मेमने की जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए आपको प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होता है। इस प्रकार आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक से कभी नहीं मिटाया जाएगा। मेमने की पुस्तक में नाम लिखवाने के बाद आपको उन्नति करना होगा, क्योंकि अपना बाइबल अध्ययन करना होगा और वह आपके अंक लिखता जाएगा। क्या आपको बहुत अच्छे अंक मिल रहे हैं? क्या आप अनुत्तीर्ण हैं? आपके जीवन में क्या हो रहा है? आपका जीवन उसके साथ कैसा है? उसकी सेवा में आप कैसे हैं? वह इन सब बातों को ध्यान में रखता है। सरदीस की कलीसिया के कुछ नाम वह जीवन की पुस्तक से मिटा देगा, तो इसका अभिप्राय है कि उनकी सेवा संतोषदायक या संतोषजनक नहीं है। कुछ विश्वासी अपने मसीही जीवन में असफल रहेंगे। जब पुस्तक खोली जाएगी, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि हमारे काम आग में परखे जाएंगे। 1 कुरिन्थियों के पत्र 3:11-15 में लिखा है, आग हर काम को परखेगी कि कैसा है। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे प्रियो, स्वर्ग में अनेक जनों के पास से धुएं की गंध आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया है। उनके परिणाम पत्र पर कुछ नहीं चढ़ाया गया है। यहां पर कहता है कि उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर को पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति ही एक अतुल्य कंप्यूटर है। मनुष्य के काम सेवा और परमेश्वर के लिए उनके प्रेम को लेखा स्वरूप स्मरण रखा जाएगा। उद्धार तो निर्मोल है और कर्मों से नहीं, विश्वास के द्वारा है। आप अच्छे कर्म करके उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके कर्मों का मूल्य तब माना जाता है जब आपका उद्धार हो जाता है, और वे अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। स्मरण रखें कि यह पुस्तक अत्यधिक सुंदर एवं अद्भुत है। परमेश्वर के इस पुस्तक का उल्लेख भजन संहिता में भी किया गया है। भजन संहिता 56 उसके 8 पद में लिखा है, तू मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। देखिए, वह कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर जानता है कि आप कहां कहां जाते हैं और क्या करते हैं। आपके पड़ोसी, आपकी कलीसिया, आपका पास्टर नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके सामने अंधकार भी ज्योतिर्मय हो जाता है। वह आपके कामों को भी देखता है। लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, यह अति सुंदर है। अपने भटके हुए बच्चे के लिए जब उसकी माँ रोती है तो परमेश्वर उसके आंसू कुप्पी में रख लेता है। जब परमेश्वर का सेवक अपने सहकर्मियों के व्यवहार से दुखी होकर रो पड़ता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, मैंने तेरे आंसू कुप्पी में रख लिए हैं। भजनकार कहता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन का पूरा लेखा रखा जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि स्वर्ग में हमें हमारे जीवन की फिल्म दिखाई जाएगी, जो वैसी नहीं होगी जैसी बातें पास्टर ने आपके दफन के समय प्रशंसा में की थी, कि आप कैसे महान मनुष्य हैं और कलीसिया के एक स्तंभ थे। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपनी फिल्म देखना नहीं चाहूंगा। नहीं चाहते हुए भी मुझे वह फिल्म देखना ही होगा। मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। क्या यह एक अति उत्तम अभिव्यक्ति नहीं है? कलीसिया परमेश्वर के पास होगी। कलीसिया बहुमूल्य अनमोल रत्न है। इसराइल में रत्नों का मूल्य नहीं समझा जाता था, जबकि अन्य जातियां उन्हें मूल्यवान समझती थी। कलीसिया उसका अनमोल रत्न है, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। परमेश्वर अपने निज भाग को एकत्र करेगा, उसके निज भाग में असंख्य जन होंगे। यहां पर लिखा है, मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले के पुत्र से करे। मेरे प्रियो, यह बचे हुए विश्वासियों के बारे में है जो उस समय होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हुए मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय के अंतिम पद यानी के 18 पद को पढ़ें। लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मेरे प्रियो, आज हम जिस युग में वास करते हैं वह मलाकी के युग के समान है, और ऐसा अंत का समय होगा। आप धर्मी और अधर्मी में अंतर नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रभु के उस निश्चित दिन जब वह फिर आएगा और न्याय करेगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सच्चा विश्वासी है और कौन पाखंडी है। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, मैं आपके जीवन के बारे में यह भी नहीं जानता कि आप सच्चे विश्वासी हैं या पाखंडी हैं, परंतु आप स्वयं को जानते हैं। समय बहुत कम है, और आज आपको परखना है, अपने जीवन को जांचना है, देखना है कि मैं कहां पर हूं, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के उस सच्चे मार्ग पर चल रहा हूं। चल रही हूं या मैं परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर की निकटता में आए, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की परिपूर्णता देंगे। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।